जय श्री साई राम। साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सकता तारुण तावता तारुणी सकता वृद्ध तावता चिंता सकता परमे ब्राह्मणी को अपी न सकता। बाल का अर्थ है बचपन, चाइल्डहुड। तावता का अर्थ है टिल देन, तब तक। क्रीड़ा अर्थात खेलना, प्ले। सकता अटैच्ड, एब्जॉर्ब, मोह से जुड़ा हुआ। तारुणा अर्थात जो बड़ा हो जाए, एडल्ट हो जाए। तावता वही टिल देन, तब तक। तारुणी यंग वुमेन, जवान स्त्री। सकता वही अटैच्ड, एब्जॉर्ब। वृद्धा का मतलब है बुढ़ापा, बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड मैन। तावता टिल देन, तब तक। चिंता का अर्थ है वरी, चिंतित हो जाना। सकता अटैच्ड। परमे ब्राह्मणी, ब्राह्मणी का यहां पर परमात्मा से भगवान परमे को बोलते थे इन द लॉफ्टी हाई, ऊपर उठना। को अपी हू सो एवर, ऐसा कोई भी नहीं, ना सकता। अंग्रेजी में अगर इसको बोला जाए एज ए चाइल्ड वन इज एब्जॉर्ब्ड इन प्ले, एज ए चाइल्ड वन इज एब्जॉर्ब्ड इन प्ले, एज ए यंग मैन इंग्रोस्ड इन यंग गर्ल्स, एज ए ओल्ड मैन इमर्स्ड इन वरीज। अलास, नोबडी इज अटैच्ड टू परम ब्रह्म। विचार कीजिएगा, बचपन में बच्चा क्या करता है? अपना सारा समय खेलकूद में लगा देता है। बच्चे को उसमें मजा आता खेलने कूदने में। द चाइल्ड इज टोटली एब्जॉर्ब्ड इन प्ले, उसका ध्यान, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा खेलकूद में लग जाती है। तरुणा तावता तरुणी सकता, जब आप बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो आपका ध्यान जवान लड़कियों पे जाता है। इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि जवान लड़की का ध्यान जवान लड़के की हो जाता है। वहीं पर अटैचमेंट हो जाता है, वहीं पर ध्यान ज्यादा जाता है। और जब कम वक्त बुढ़ापा आता है ना, आमिर चिंताओं में खो जाता है। बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, मकान का कुछ हो रहा है, दुनिया भर की चिंताएं दिमाग को सताती रहती हैं। आप किसी भी बूढ़े व्यक्ति से पूछ लीजिए, कोई न कोई चिंता से ग्रस्त होंगे वो। चिंता चिता समान, चिंता इंसान को चिता की तरह जलाती है। एक बार फिर से सुनते हैं। बाला तावता क्रीड़ा सकता, बचपन खेल में खोया। तरुणी तावता तरुणी सकता, जवानी में जवान स्त्रियों पर ध्यान लगता रहा। वृद्ध तावता चिंता सकता, बुढ़ापे में चिंताओं से ग्रस्त हो गए। पर मैं ब्राह्मणी को आप भी ना सकता, लेकिन कोई भी अपने आप को परमात्मा के साथ नहीं जुड़ता। अब जरा सोचिएगा, ऐसे एक हिंदी में भी एक चंद लाइनें हैं, चंद पंक्तियां हैं। बचपन खेल कर रोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। थोड़ा सोचिएगा हमारा जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता है। पहली बात यह है, हमारे पास दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कोई गोल नहीं है लाइफ का। लाइफ का गोल जो है ना, मेटीरियल गोल है। जो जीवन में पाना चाहते हैं, हम बोलते हैं जब मैं 40 साल का होऊंगा। आजकल बड़े से जो यंगस्टर्स हैं, उनसे पूछा है, बोलेंगे आई वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 45। 45 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा और मैं बीच में जाके बैठूंगा। कोई कहते नहीं, मुझे किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनना है। अच्छी बात है, लेकिन ये मटेरियल गोल्स है, ये आपको जो चीजें मिल रही हैं, करुणा में परमात्मा आपको दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा भाई, जब आपका शरीर छूट जाएगा तब कहाँ जाओगे आप? हमारे पास जीवन का गोल नहीं है असल में, एक पर्पस। ये व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, किससे पूछा जाए भाई आपका आने का उद्देश्य क्या है? शब्दों पे गौर कीजिएगा, एक जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, संसार में आने का उद्देश्य क्या है? हमारा जन्म हुआ है, कोई तो उद्देश्य होगा, कोई तो पर्पस होगा। आप जरा देखिए, एक मच्छर है, मच्छर उसकी उम्र होती है एक दो दिन की। कई मच्छर जो कुछ घंटों में मर जाते हैं, जन्म भी लेते हैं, जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, मर भी जाते हैं। क्या जीवन है, पैदा हुए, उड़ते रहे, खाना पीना खोजते रहे, खून चूसते रहे, जाके मर गए। जानवर की जिंदगी क्या है, एक पक्षी पैदा हुआ, उड़ना सीखा और साथ साथ में भोजन की व्यवस्था करना सीखा, किस प्रकार से भोजन को इकट्ठा करने। आप जरा देखे चिड़िया को, अंडे से निकली, मां ने आके उसके चोंच में भोजन डाला, चिड़िया का बच्चा अब उड़ना सीख गया, अब अपना भोजन स्वयं खोज रहे हैं। और उसको आता है घोंसला बनाना, और उसको पता है कि आगे बच्चे कैसे पैदा करने हैं। दैट्स ऑल। कभी आपने चिड़िया के घोंसले को देखा है आपने, वो कैसे घोंसला बनाती है? उड़ती हुई जाती है, एक एक तिनके को बटोरती है, उसको ला के एक स्थान पे रखती है, उनको इकट्ठा जोड़ती है, एक घोंसला बनाती है, फिर उस घोंसले में अपने अंडे देती है, वहां बच्चे पैदा होते हैं। प्रकृति ने, परमात्मा ने, भगवान को उसको ये स्किल्स दी हुई है। आज से 100 साल पहले भी चिड़िया ऐसे ही घोंसला बनाती थी जैसे आज बना रही है। आज से 1000 साल पहले भी चिड़िया ऐसे ही घोंसला बनाती थी जैसे आज बना रही है। हजारों साल पीछे चले जाओ इतिहास में, चिड़िया का घोंसला बनाने का तरीका वही रहा है, और आने वाले समय में बदलने वाला नहीं है। ऐसा क्यों, उसकी तकनीक में कोई बदलाव क्यों नहीं आया? जरा सोचिएगा जरा। क्योंकि परमात्मा ने चिड़िया को एक सीमित बुद्धि दी है, एक लिमिटेड इंटेलेक्ट दी है, लिमिटेड नॉलेज दी है, बॉर्न विद द नॉलेज, उसको इतना पता है कि तिनके को उठा के लाना है, कैसे जुड़ना है, दैट्स ऑल। उससे आगे नहीं उठ सकती वो, क्योंकि उससे आगे उसको पता ही नहीं है, उसकी बुद्धि उससे आगे काम ही नहीं करती है, उससे आगे विचार नहीं कर सकती वो। इसी प्रकार से अन्य पशु, जानवर, पक्षी, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, सभी को परमात्मा ने सीमित बुद्धि दी है, वो उससे आगे नहीं जा सकते, है ना कमाल की बात। एक बीज है, आपने बीज को मिट्टी में, धरती में बो दिया, वो एक पौधा बन गया, पौधे से वृक्ष बन गया, वृक्ष में फल आ गए, उस फल से फिर बीज निकले, फिर वही दोबारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक बीज आपको फल तक ले जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। वनस्पति जो है, जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी लिमिटेड नॉलेज है, प्राकृतिक है। पशु पक्षियों की लिमिटेड नॉलेज है, ये सीमित बुद्धि है, सीमित ज्ञान है, उससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है जिसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड नॉलेज। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो परमात्मा तक की यात्रा पूरी कर सकता है, करना चाहे तो। परमात्मा तक जाने के लिए हमारे को अपना फोकस बदलना होगा। हम भगवान तक कैसे पहुंचे, उसके लिए समय चाहिए, टाइम चाहिए, कुछ प्लान चाहिए, कुछ स्पिरिचुअल प्लान चाहिए, लेकिन हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि हमें परमात्मा से प्रेम नहीं है। बात तो सच ही है, तरुण तावता तरुणी सकता, जो जवान होते हैं हमारा ध्यान स्त्रियों में जाता है, या जवान स्त्रियों का पुरुषों में जाता है, एक दूसरे के शरीर को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। जरा आप एक पल सोचिएगा, हम कर क्या रहे हैं, हमारे कर्म हमको कहां लेके जा रहे हैं, आपका पैसा आपको कब तक काम देगा, एक बात ध्यान लें, सोचने वाली बात है। नहीं फर्क पड़ता आप कितने पैसे जमा करते हैं, नहीं फर्क पड़ता आपका बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है, आप चाहे सारे संसार के धन संपत्ति को ले लें, लेकिन अगले जन्म में पैदा नंगे ही होंगे आप। साथ जाने वाला कुछ है ही नहीं कर्म के अलावा। क्योंकि हम संसार में डूबे हुए हैं, हमारा फोकस संसार में है, हमारा ध्यान संसार में है, हम संसार में डूबे हुए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, हम तैर के संसार को पार नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अचानक याद आ गया, एक बार एक नाविक किसी एक पंडित को, बड़ा ज्ञानी पंडित था, उनको नाव पार करा रहा था, तो पंडित से पूछा भाई मल्लाह से पूछा भाई तुम तुमने गीता पढ़ी है बोल नहीं महाराज रामायण तो पढ़ी होगी ने वो भी नहीं पढ़ी अच्छा अच्छा कुछ शास्त्र पढ़े होंगे अशास्त्र का अध्ययन किया नहीं तो पंडित जी ये जानना चाह रहे थे मल्ला ने पढ़ा क्या है सारा जीवन व्यर्थ हो गया उसका तो क्या तेरा जीवन सारा खराब हो गया ना तूने गीता पढ़ी ना भागवत पढ़ी ना रामायण पढ़ी ना उपनिषद पढ़े हैं ना तुमने वेदांत पढ़े हैं ना पुराण पढ़े हैं तुमने कुछ पढ़ा नहीं तुम्हें आता तुम्हें तुम्हें अध्ययन ही नहीं किया कभी योर लाइफ हैज बीन वेस्टेड बेचारा मल्ला मायूस हो गया बोला महाराज मुझे मौका नहीं मिला मैं तो सुबह उठते परमात्मा का नाम लेके अपने काम में लग जाता हूँ शाम को घर जाता हूँ नैया को बांधता हूँ घर पहुंचता हूँ वहां जाके नहा धो के थोड़ी पूजा करता हूँ प्रार्थना करता हूँ परमात्मा की उसके बाद अपने फैमिली के साथ अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करता हूँ तेरे की ये जीवन तुम्हारा बोला महाराज मैंने सुना है कि अगर मैं अपना ध्यान भगवान पे रखूं तो भगवान मुझे अपने आप नैया पा करा देंगे मेरी संसार को पा करा देंगे इतने में थोड़ा तूफान का मौसम बन गया नाविक ने पूछा महाराज आपको तैरना आता है पंडित जी बोले नहीं मुझे तैरना नहीं आता उसने कहा आपको तो सारा जीवन खराब हो गया अभी क्योंकि अभी नौक नौकर डूब जाएगी आप तैर के पार कैसे करोगे ये तो एक साधारण सी नदी की बात कर रहे हैं संसार को सागर से कम नहीं है मन से भजो रे गुरु चरणम दूस्तर भव सागर चरणम हे मन परमात्मा के नाम को भज ले हे मन गुरु के चरणों को भज ले मनस भजरे गुरु चरणम दूस्तर भव सागर तन इस संसार को पार करना बहुत दूस्तर है बहुत कठिन है और अगर हम अपने संसार में इस संसार में हमारा फोकस हमारा ध्यान केवल संसार में रहेगा तो हम नहीं पहुंच पाएंगे उत्तर तक परमात्मा तक इसलिए कहा गया भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते परमात्मा के नाम को बार बार भज ले भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते सम प्राप्त नहीं धानी काले नहीं सद करने संसार को पार करना दूसर थे भाव कोई तरीका नहीं है पार करने का भज गोविंदम गोविंदम भज मूल पते सम प्राप्त तनिति काले नाही नाही रक्षी दुख करने जब तुम्हारा अंत समय आएगा तब ये विद्या तुम्हारे काम नहीं आने वाली कोई भी ये पहला श्लोक था भज गोविंदम का आदि शंकराचार्य कहीं जा रहे थे सामने देखा एक पंडित है कोई ब्राह्मण है संस्कृत ग्रामर को रटने का प्रयास कर रहा है संस्कृत व्याकरण को रट रहा है उन्होंने पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो वो बोले मैं संस्कृत व्याकरण को याद कर रहा हूँ मैं राजा के दरबार में जाकर सुनाऊंगा मुझे उसे धन संपत्ति प्राप्त होगी बोले मूर्ख तो पागल है मूर्ख है तो सारा समय इसमें लगा हुआ है भज गोविंदम गोविंदम भज मूर मते हे मूर्ख परमात्मा के नाम को भज ले सम प्राप्त नहीं थी काले ना ही रक्षती दृढ़ करने जब अंतकाल आएगा तब ये ग्रामर तेरे काम व्याकरण तेरे काम नहीं आएगी। मृत्यु के समय आपको वो काम आएगा जो आप जानते हैं, बोरोड नॉलेज नहीं, उधार ली हुई जिंदगी नहीं, उधार लिया हुआ ज्ञान नहीं। अगर आपने कोई ज्ञान को प्राप्त किया है तो आपके तन मन धन में सब जगह छा जाना चाहिए, आपकी आत्मा में जाके बैठ जाना चाहिए। अगर आपने ज्ञान प्राप्त किया है तो विचार कीजिएगा जरा आप। अगर आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है फिर जो भी आपके पास नॉलेज हम कहते हैं ना वो खाली एक बोरोड नॉलेज मानी जाती है। ट्रू नॉलेज वही है, सच्चा ज्ञान वही है जो अंतकाल में काम आए, अंतकाल में आपको परमात्मा का दर्शन करा दे। इसलिए यहां पर कहा गया जैसा आपने सुना था अभी आपने कि हमारा जो जीवन है एक पानी के बुलबुले जैसा है। पानी का बुलबुला रस्सी भर के समय के लिए आता है फिर डूब जाता है पानी वापस, ऐसे हम भी चले जाएंगे। तो विचार कीजिएगा किस प्रकार से हम अपने जीवन को बाहर निकालने से बाढ़ तावता कीड़ा सकता। बचपन में हमने सारा समय खेल कूद में खेल में लगा दिया, हमारा ध्यान हमारा फोकस वहां चला गया। तरुणा तावता तरुणी सकता, जवानी में हमने अपना ध्यान केवल जवान स्त्री पुरुषों में लगा दिया। विद्ध तावता चिंता सकता, जब बुढ़ापा आया चिंताओं ने हमें ग्रस्त कर लिया, चिंताओं में डूबे रहे। पल में ब्रह्मणी को अपना सकता, परम ब्रह्म को याद नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, कोई भी ऐसा नहीं किया हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो परमात्मा को असल में देखना भी चाहते हों। क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि हमें संसार पसंद है। सारी बात तो ये है, हम संसार से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। होगा के पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जनरी जठरे शयनम इया संतारे बहुत उतारे कृपा पारे पाही मोरारे। एक बार फिर से जन्म लेना, एक बार फिर से मरना, एक बार फिर से माता के कोख में लेटना, इस संसार को पार करना बहुत दुस्तर है, इसमें आपको ईश्वर की कृपा चाहिए। यर्न फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, परमात्मा की कृपा की चाहत को लेकर आए, वो तभी होगा। अन्यथा जन्म जन्मांतरों तक हम धक्के खाते रह जाएंगे। अभी तक हमारा समय जो व्यर्थ हो गया तो वो तो हो गया, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। लेकिन भविष्य के बारे में हम सोच सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। यही पल है, यही समय है, वो आज है जो करना है आपको। जय श्री साईं राम।